मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है।
शांति। मधुबन कितना मधुर मधुर है मधुर हा? मन गाता है कि मधुबन मधुर है, गाता है। कैसे मधुर है, क्या मधुबन की मधुरता है हा? बाबा का मिलन होता है और क्या मधुरता है हा? ज्ञान मिलता है। अच्छा, दैवी परिवार मिलता है। अच्छा, और क्या मधुरता है? पवित्रता मिलती है यहाँ, ऐसे बोला ना, वातावरण मधुर है। अच्छा, और क्या क्या है? फिर इतनी इतनी सब बातें याद रहती है, जो कुछ मधुबन में अनुभव मिलता है, मधुबन कितना मधुर है, अगर इतना ही याद करे तो मधुरता मन के अंदर आ जाती है, मन मधुर बन जाता है। ये नहीं बोला ना, ये सब जो कुछ दिखाई पड़ता है वो सब मधुर मधुर है, और वो सब मधुरता मिलने से क्या हो जाता है, अपना मन भी मधुर हो जाता है। मधुर माना सरल मीठा, और जब मन मधुर है तो क्या करता है हा? सर्व को जैसे मधुबन मधुर है तो खुशी होती है, देखने से आने से मिलने से वो मधुरता हमें अनुभव होती है। वैसे जब अपना मन मधुर बन जाता है तो क्या होगा, हम औरों को वो मधुरता का अनुभव कराते रहेंगे, ठीक है ना। तो मधुबन में आकर के मधुबन की मधुरता जितनी हमें अनुभव हो उतना फिर हम अपने से औरों को वो मधुरता का अनुभव कराते रहे। अगर इतना भी याद है, ये भी याद है, तो ये भी याद मानी जाएंगी, ठीक है ना। याद माना, याद हम किसको कहते हैं, आज का विषय है ना, याद और सेवा। आप लोगों के मन में कुछ इसका चिंतन चला हुँ? भाई आज का विषय है क्लास का याद और सेवा। चलो क्लास में तो सुनेंगे, पर आप सब तो अनुभवी है ना, बाबा का सुना हुआ है, अपने मन में थोड़ा सोचा कि याद और सेवा पे बाबा ने हमें क्या क्या बातें बताई हैं। जिसने सोचा हो, जिसके मन में ये विचार चला हो, जरा हाथ तो उठा ले। अच्छा है, विचार करने वाले हैं, अच्छी बात है। इसको याद कहा जाता है, इसको कहा जाएगा जो हमने सुना उस सुनने को हमने अपने विचार में लाया। और बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं, आज के मुरली में बाबा ने कोई याद की बात कही, आज की मुरली अमृत वेले के क्लास में जो हमने आज मुरली सुनी, मुरली के अंदर बाबा ने कोई याद की बात कही हाँ। बाबा की मुरली में तो याद की ही बातें हैं, बच्चों को बार बार बाबा ये सिखाते हैं, बच्चे याद करो याद करो, ऐसे याद करो ऐसे याद करो। रोज रोज बाबा हमें भिन्न भिन्न प्रकार से याद का अभ्यास कैसे करो सिखाते रहते हैं। आज की मुरली में कौन सा प्रकार था? वाह, चलो सभी को याद है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ सभी, देखो जो बात याद होती है कैसे बोलने लग जाते हैं, कोई उधर से बोलता कोई उधर से बोलता कोई उधर से बोलता, तो अच्छी रिमझिम लग जाती है। हाँ तो इतना ही जी, ये भी अच्छा है कि याद मौजूद है। नहीं तो क्या होता है, क्योंकि आज दादी ने 2-3 बार ये बात याद दिलाते रहे ना, पूछते रहे याद दिलाते रहे तो याद है। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है, मुरली सुन लेते हैं उस समय तो मन खुशी में नाचता है, लेकिन फिर जब बाहर जाते हैं, इतना अपना बेहद का परिवार मिलता है, तो मिलने जुलने में लग जाते हैं, उस खुशी में वो खुशी मर्ज हो जाती है। और जो सुबह को अमृत वेले बाबा ने हमें सजाया, जो बातें बताई, वो फिर उस खुशी में परिवर्तन हो जाती है। ऐसे भी होता है, पर आज ये खुशी की बात है जो क्लास के अंदर अधिक ने ये जवाब दिया कि आज बाबा ने याद की क्या बात बताई। बाप, टीचर और सतगुरु, तीनों रूपों में बाप को याद करना है। और तीनों रूपों से कब याद करना है? हाँ, तीनों रूपों से चलते फिरते याद करते रहना है। तो आज ये लगता है जो सुना है उसको अमल में लाया है, चलते फिरते याद करते रहे हो, तो अभी बताने का उमंग है। तो यही याद बाबा हम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से बताते हैं कि कैसे याद करो, क्योंकि बाप को याद करना तो बड़ी सहज बात है, लेकिन हम बच्चों को सहज लगता है ना, मुश्किल तो नहीं लगता है ना। हाँ ये तो नहीं कहते हो ना, याद भूल जाती है। हाँ ये नहीं कहते हो ना, बड़े आवाज से बोलो नहीं। पर पहला पहला रूप तो ये था ना कि हाँ भूल जाता है, जवाब नहीं दे रहे थे। तो याद भूलनी नहीं चाहिए, और भूल न जाए इसके लिए बाबा हमें भिन्न भिन्न प्रकार से कैसे बच्चे याद करो, क्योंकि हम बच्चे और वो हमारा बाप है, बाप को बच्चे कभी भूल नहीं सकते हैं। लेकिन हम बच्चे अनेक जन्मों से स्वयं कोई भुला बैठे तो बाप की याद भी भूल गई थी, ठीक है ना। बाप ने हमें स्वयं का भी परिचय दिया, तो बाप ने अपना भी परिचय दिया। दोनों परिचय दे, जब हमने स्वयं को पहचाना तब जो हमें बाप का परिचय मिला, वो फिर हमें बच्चों को बाप की याद बनी रही। फिर भी बच्चे अपने आप को भी भूल जाते हैं तो बाप भी भूल जाता है, इसलिए बाबा हम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार, अभी याद करो कि क्या क्या प्रकार बाबा ने हमें याद के बताए हैं, जिससे हमें याद सदा ही बनी रहे, सुतह बन जाए याद हमारी, स्वाभाविक रूप हो जाए याद का, जो याद हमें याद करना न पड़े, अपने आप याद आती रहे। क्या क्या बाबा ने हमें याद के प्रकार बताए हैं, जब वो बातें हमारे अंदर चिंतन में आ जाती है, बाबा ने हमें क्या क्या बताया है। पहली बात याद करो, हाँ, स्वयं की पहचान दी, अर्थात स्वयं के स्वमान में बाप ने स्थित कराया। को जब स्वयं के स्वमान की पहचान दी और स्वमान को जब हमने जाना, तो स्वमान को अगर हम याद करते रहते हैं तो ये भी याद है, क्योंकि हमें ये जानना होगा। सुनते हैं उस समय तो हमारी बुद्धि में बैठ जाता है, बाबा ये भी याद बताई, ये भी याद बताई, ये भी याद बताई। पर जितने प्रकार बाबा ने याद के बताए, वो प्रकार हमारे बुद्धि में चलता रहे। जैसे आज बाबा ने बोला ना, चलते फिरते याद करते रहो। बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। अभी आप सोचो, अगर ये तीन रूप, तीन शब्द ही अगर हमारे बुद्धि के अंदर चलता रहेगा, घड़ी घड़ी हमें याद आएंगी, बाप तो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, तो जब बाप को याद करेंगे तो क्या क्या याद आएगा? शब्द एक बाप है, जब बाप की हमें याद आएंगी तो क्या क्या याद आएगा, कितनी बातें याद आ जाएंगी। और उस याद में अगर बाप की वो बातें बाप याद आएगा, तो बाप के साथ बाप का नाम, रूप, धाम, गुण, कर्तव्य। अब नाम को याद करो तो बाप का नाम, बाप का नाम कल्याणकारी शिव बाबा, ठीक है। हमेशा शिव बाबा जब बोलो तो कोई ना कोई आगे से कर्तव्य का टाइटल जरूर हो। ये देखो, कोई भी बड़े व्यक्ति का नाम लेंगे तो उनके आगे टाइटल देंगे ना, तो ये तो बाप का टाइटल नहीं है, पर ये भी एक किस्म की याद है। कितनी महानता हमें अपने बाप की है, तो ऐसी महानता का कोई शब्द जिससे क्या होगा कि बाप के नाम के साथ जब बाप की महानता याद आएगी, तो उस महानता के साथ बाप का पूरा कर्तव्य याद आएगा, और कर्तव्य याद आएगा तो कर्तव्य के साथ बाप के गुण याद आएंगे, बाप की शक्तियां याद आएंगी। तो एक शब्द के अंदर कितनी याद भरी हुई रही और वो कितना समय हमें याद रहेंगी, ये बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कि याद कितनी सहज है। शब्द एक बाप को याद करो, लेकिन बाप का नाम याद आया, बाप तो हमारा कल्याणकारी शिव है, नहीं विश्व का रचता है। कितने बाप के नाम है? नाम तो एक ही है शिव बाबा, लेकिन उस नाम के साथ कितने बाप के कर्तव्य हैं, और एक एक कर्तव्य का नाम लेते जाएं, नहीं विश्व का रचयिता है, सारी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, ये याद है ना। जब बीज रूप याद करेंगे और उसके साथ सारा वृक्ष याद आ जाएगा, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष, तो सारे चक्कर की नॉलेज बुद्धि में आ जाएंगी। तो आप सोचो, एक शब्द के अंदर कितनी बाबा की बातें भरी हुई है, और अगर हम वो एक शब्द याद करते रहें, तो अपने आप हमारे मन के अंदर ये यादें स्मरण में आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी। अगर इसी रीति हमारे मन के अंदर ये यादें स्मरण में रहेंगी, तो याद भूलेंगी। इसी प्रकार से जब हम टीचर याद करेंगे तो क्या क्या याद आएंगे? बाप हमारा टीचर भी है, शिक्षक है, तो ये शिक्षक हमें कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं? शिक्षक के साथ पढ़ाई याद आएंगी, और ये पढ़ाई कौन सी पढ़ाई है? कौन सी पढ़ाई? रूहानी पढ़ाई। ये हमारी ईश्वरी पढ़ाई, जिसको ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई कहा जाता है। ये पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकता है, जो पढ़ाई हमें ऊंचे ते ऊंचा बाप आके पढ़ाता है। भले कहने में बाप आएगा, लेकिन शिक्षक के संबंध से पढ़ाई याद आई, और पढ़ाई के अंदर कितनी सब्जेक्ट आ जाती है, हमारे पढ़ाई की कितनी सब्जेक्ट है, कौन सी? अब जब ज्ञान कहा तो ज्ञान कितना विस्तार है, कुछ तो विस्तार बुद्धि में आ जाएगा ना, क्योंकि मन की गति बड़ी तीव्र है। शब्द मुख एक बोलेगा, लेकिन एक शब्द जो हम मुख से निकालेंगे उसका विस्तार मन के अंदर कितना हो जाएगा। जब तक हम बोल रहे हैं, आप लोग सोचो अपने अंदर, तो ऐसा होता है या नहीं? जब हम बोलते हैं बाप हमारा शिक्षक है, तो शिक्षक के साथ जो उसका विस्तार है अपने आप हमारे मन के अंदर घूम जाएगा। अगर हम इस प्रकार से, इसी भाव से, इस स्मृति से याद करते हैं, तो एक शब्द के अंदर इतनी सारी यादें बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं चलते फिरते याद करते रहो। कहीं कहते हैं ना भाई चलते फिरते कैसे याद करेंगे, तो चलते फिरते क्या, एक शब्द अपने आप उसका विस्तार हमारे मन के अंदर होता रहेगा। क्योंकि चलते फिरते तो हमें कुछ काम नहीं करना है ना, जब यहाँ से चल जाते हैं कहाँ जाना है उसमें तो और कोई काम नहीं है, केवल चलना ही है। तो बुद्धि फ्री है हमारी, मन को उस समय कोई काम नहीं है। तो बाबा हम बच्चों को ये सिखाता है कि मन को कैसे बिजी रखो। चलो शरीर तो बिजी हुआ, इधर से वहां चलना जाना है, लेकिन मन ने क्या किया, मन भी उस शरीर को देखता रहे, इधर जाना है उसको याद कर, यहाँ जाना है या पता है वस्तान कहाँ है, कहाँ पहुंचना है, यहाँ से उठ के वहां पहुंचना है। अभी जब तक हम पहुंचे, एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, जितना भी लगे, पर मन की एक मिनट के अंदर गति कितनी तीव्र है, वो कितनी बातों को याद कर सकता है एक मिनट के अंदर। तो बाबा हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि मन को फ्री नहीं रखो, मन को बिजी रखो। मन बिजी रखने, और मन को किस में बिजी रखो, क्योंकि मन का काम है, बाबा ने बताया है ना, मन का काम है मन मना भव के रहना। शरीर के कर्म इंद्रियों का काम, हर कर्म इंद्री का अपना अपना काम है। इसी प्रकार से मन का काम है मन मना भव होके रहना। तो हमें बाबा सिखाते हैं कि मन को कैसे सदा मन मना भव का काम देते ही रहो। तो मन मना भव अर्थात मन को मेरे में लगाओ, एक बाप में मेरा मन लगा रहे, ये बाबा हमें सिखाता है। तो चलते फिरते, आज की मुरली में तो एक बाबा ने बात बताई, चलते फिरते बाप, टीचर, सतगुरु, तीन रूपों को याद करना है। और एक ही ये बाप है हमारा जो तीनों रूपों से हम बच्चों की पालना करता है, और कोई भी मनुष्य तीनों रूपों से नहीं कर सकता है। बाप होगा तो टीचर अलग है, सतगुरु कोई समझो, कोई बाप टीचर भी है तो गुरु नहीं बन सकता है, गुरु अलग है। तो मनुष्य बाप अलग है, टीचर अलग है और गुरु अलग है, लेकिन ये हमारा सुप्रीम बाप जो सबसे ऊंचा है, वो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। और ये अगर हमारे को स्मृति आ गई तो उसके पीछे इसका सारा विस्तार हमें बुद्धि में आता रहेगा। बाप के साथ हमें वर्षा भी याद आएगा, केवल उसका नाम, रूप, धाम, गुण, कर्तव्य इतना ही नहीं, परंतु बाप से हमें क्या वर्षा मिलता है वो भी याद आएगा। और बाप की महानताएं अगर याद करते जाओ कि ये हमारा बाप भाग्य विधाता है, हमें कितना ऊंचे से ऊंचा भाग्य देता है, तो जब हमें अपना भाग्य याद आ जाएगा तो कितना खुशी का पारा चढ़ जाएगा। और उस खुशी में क्या होगा, इस दुनिया का, पुरानी दुनिया का सब कुछ अपने आप भूल जाएगा। इसको बाबा कहते हैं सदा अपने अंदर में याद बनी रहे। उसके भिन्न भिन्न तरीके बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कमी सिर्फ इस बात की है, जो सुनते हैं देखो आज जो सुना है वो याद रखा है तो कितना खुशी से जवाब दे सकते हैं, और वो जवाब देने के बाद भी फिर अभी याद आता रहेगा। तो ये बाबा कहते हैं सिर्फ इस बात का ध्यान रखो, अटेंशन इस बात का हो, जो सुनते हो उसको बार बार मन के अंदर चिंतन करते रहो। जितना हम चिंतन करेंगे, जिस बात का चिंतन करेंगे वो हमारा स्वरूप बन जाएगा, क्योंकि चिंतन से ही ये हमारी चैतन्य मूर्ति बनती है। आत्मा क्या है? मन बुद्धि संस्कार वाली है ना। तो आत्मा के अंदर ये मन के द्वारा जो हम चिंतन करते रहेंगे, उस चिंतन के द्वारा वो श्रेष्ठता, वो गुण, वो शुद्धता हमारी आत्मा में, अर्थात मुझ आत्मा के अंदर ऐसी शुद्धता भरती जाएंगी। और जितनी आत्मा में शुद्धता भरती जाएंगी, जितनी आत्मा में श्रेष्ठता भरती जाएंगी, वो श्रेष्ठता हमारे जीवन के शरीर के कर्म इंद्रियों द्वारा कर्मों में आती रहेंगी, और हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते जाएंगे। तो हमारा स्वरूप क्या हो गया? हमारा स्वरूप श्रेष्ठ हो गया। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं मन के अंदर जो सुनते हो उसका चिंतन करते रहो। तो अगर हमारे मन के अंदर ये चिंतन चलता रहता है तो ये हो गई याद, तो कर्म करते भी याद बनी रहे। याद और सेवा का बैलेंस, कौन सी सेवा जो हमें याद दिलाती रहेंगी? पहले तो हम उस सेवा को अगर अपने में धारण कर लेते हैं, वो सेवा जिसमें हमारी याद बनी रहे, जब ये हमारा अभ्यास हो जाता है तब फिर हम जो भी कर्म करेंगे, कर्म करते भी हमारी याद बनी रहेगी। कहा जाता है ना, ये हमारा कर्म योग है। लोग मानते हैं कर्म ही योग है, नहीं कहीं कहीं कहते हैं भाई परिवार को संभालना, प्रवृत्ति को पूरी रीति से ध्यान देना, यही तो योग है। भगवान ने ये भी तो हमें प्रवृत्ति दिया, उसको भी तो संभालना है। तो लोग कहते हैं कर्म ही योग है, परंतु बाबा कहते हैं कर्म करते हुए योग में रहना है। कर्म ही योग नहीं है, योग में रह करके कर्म करना है। योग माना याद। तो बाप की याद में रह करके कोई भी बाबा की बात, चाहे बाप को बाप की महानताओं से याद करे, चाहे बाबा को बाबा ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं उन शिक्षाओं के आधार से याद करें, चाहे बाबा ने जो हमें पढ़ाई पढ़ाई या नॉलेज दी है जिसको ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान का भी तो विस्तार बहुत है ना, चाहे उस ज्ञान के आधार से माना पढ़ाई के आधार से याद करें। तो देखो कितनी बातें बाबा ने हम बच्चों को समझा दी है, अगर वो बातें हमारे बुद्धि में भरी हुई हैं तो अपने आप याद आती रहेंगी। तो हमारी बुद्धि में ये सब बातें भरी हुई रहे, बढ़ती जाए, उसका साधन यही है कि जो बाबा हमें सुनाते हैं उसको हम बार बार अपने अंदर चिंतन करते रहे। जितना चिंतन करेंगे उतना अपने आप बुद्धि रूपी खजाने के अंदर वो भरता जाएगा। जब खजाने में भर गया, जब चाहो उसको निकाल सकते हो, जब आवश्यकता पड़ेगी वो खजाना निकल आएगा, लेकिन भरा हुआ रहे ना। जितना खजाना भरता जाएगा उतना समय पर अपने आप निकलता आएगा। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं मुझे याद करो। किस आधार से बाप की याद हमारे पर बनी रहती है? बाप की याद हमारे पास बनी रहे उसका आधार क्या? किस आधार से बाप की याद सुतह आती रहेगी, बार बार आती रहेगी? बोलो, मुरली का जवाब दे दिया, अभी विचार का जब विचार से जवाब दो। पवित्रता, और बोलो, किसकी भी याद आती है तो किस आधार से आती है, अब जवाब दो। बहुत सहज। अभी अलग अलग जवाब है, हाँ? तो फिर एक एक बोले, वो तो सुना हुआ था तो एक ही जवाब था। हाँ, एक मिनट। हाँ बोलो, संबंध के आधार पर। अच्छा, आप यहाँ से क्या बोल रहे थे? प्राप्ति के आधार पर। और भी कोई बोल रहा था कुछ? स्नेह के आधार पर, ठीक है। हाँ, लगन के आधार पर। और चित्रों के आधार से भी याद आएंगी। अच्छा, हाँ, ये तो क्लास बड़ा होशियार है। जवाब बड़े अच्छे अच्छे दे रही है। तो ये बात राइट है कि प्राप्ति के आधार पर भी याद आती है, संबंध के आधार पर भी याद आती है, और स्नेह के आधार पर भी याद आती है। तो स्नेह भी तब बनता है जब प्राप्ति होती है। लौकिक रीति में भी देखा जाए, जहां से कोई अपना स्वार्थ पूरा होगा तो उनकी याद आती रहेगी, उससे स्नेह बना रहेगा। तो स्नेह का आधार भी प्राप्ति है, और प्राप्ति का आधार हमारे ज्ञान के अनुसार, प्राप्ति का आधार, हाँ, टोटल सबका आधार, पहला हमारा मूल फाउंडेशन है। हाँ, मूल हमारा फाउंडेशन यही आएगा कि बाप पर जब हमारा इतना अटूट निश्चय रहेगा, निश्चय के आधार पर हम प्राप्ति करते हैं, प्राप्ति के आधार पर हमारा स्नेह और संबंध जुट जाता है, और उस स्नेह और संबंध के आधार पर याद सदा बनी रहती है। इसलिए ये निश्चय में तो हम सब पास है, पर इतना अटूट निश्चय हो, और उस निश्चय के आधार पर जब हमने मान लिया, जान लिया, पहचान लिया, ऊंचे ते ऊंचा बाप हमें मिला है, तो उससे हमें कितनी ऊंची प्राप्ति होगी। तो ऊंचे ते ऊंचा बाप है ये हमने मान लिया है, समझ लिया है, लेकिन समझना हमारे प्रैक्टिकल जीवन में तब आता है जब हमें उनसे जो प्राप्ति होती है उसका हम अनुभव करते जाएं। ऊंचे ते ऊंचा बाप कैसे हैं, क्या क्या उनकी ऊंचाई है, कितना हमें वो ऊंचा ज्ञान देता है, जो नॉलेज कोई नहीं दे सकता है, आत्मा की पहचान कोई नहीं दे सकता, यथारथ पहचान। आत्मा तो हर एक बोलता है, आज वेदों शास्त्रों ग्रंथों में आत्मा और परमात्मा का नाम बहुत आता है, परंतु आत्मा का यथारथ ज्ञान, यथार्थ आत्मा है क्या, चलो ज्योति है ये भी सब बोलेगा, परंतु मन बुद्धि संस्कार सहित है आत्मा इस सारे 84 के चक्कर में कैसे आती है, और 84 का चक्कर पूरा करके फिर अपने वापस परम धाम बाप के साथ जाती है, फिर परम धाम से सुख धाम में आती है, ये पूरी नॉलेज कोई नहीं दे सकता है सिवाय बाप के। और आप सोचो जब ऐसी ऊंची नॉलेज हम बैठ करके अंदर में सोचें और सारा चक्कर हमारे बुद्धि में घूम जाए, तो आप सोचो कितनी खुशी हो जाएंगी। हम इतने ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे, इतने जानकार बाबा ने हमकी कितनी ऊंची नॉलेज दे दी है, तो एकदम खुशी का पारा चढ़ जाता है। और ऊंची नॉलेज के आधार पर जो बाबा हमें बताता जाएगा ना, उस पर हम ध्यान देते रहेंगे। ध्यान देने के कारण जो बाबा हमें कहता जाएगा वो हम करते जाएंगे, पालन करते जाएंगे। तो याद एक ऐसी है, और याद के साथ जितनी याद है उतना हमें बाबा के महावाक्यों का महत्व है। महावाक्य भी कितने ऊंचे हैं, उसका महत्व होने से हम उसको अपने में धारण करते जाएंगे। कोई भी ऊंची वस्तु अगर हमें हाथ में मिलेंगी स्थूल में ही, हम उसको छोड़ेंगे भाई, इतनी ऊंची इतनी मूल्यवान है, कैसे इसको छोड़ें, जरूर अपने पास रखेंगे। तो जब हमें ये महत्व होता है, ऊंचे ते ऊंचा बाप, उसकी ये नॉलेज इतनी ऊंची है, जिस ऊंची नॉलेज से फिर इतनी ऊंची प्राप्ति है। अभी भी जीवन हमारी इतनी ऊंची बनाता है, अभी की ऊंची जीवन बनने के बाद फिर हमारे भविष्य में भी इतनी ऊंची जीवन बनती है। तो ये जब हमारे बुद्धि में बार बार याद आता है, इस याद से जो हमें बाप बताता जाता है उसको हम जीवन में धारण करते जाते हैं, अर्थात हम अपने कर्मों में उन बातों को लाते जाएंगे। जीवन में धारण करने का मतलब कि वे गुण हम अपने जीवन के कर्मों में लाए। जब तक हमारे जीवन के कर्मों में बात नहीं आई है, भले हमने समझ लिया, पर उस समझ के आधार पर मेरे कर्म ऐसे नहीं है तो ये नहीं माना जाएगा कि हमने समझ लिया है। बुद्धि ने समझ लिया, परंतु कर्म, अगर कर्म वो ही है, मैंने समझ लिया मुझे बड़ा मधुर बोलना चाहिए और हमारा वही बोल रहे, वही हम आवेश में आ जाए, तो फिर हम मानेंगे कि हाँ हमें समझ है कि मधुरता मेरा गुण है। तो जो हमें समझ आए उसको हम कर्मों में लाते रहे, और निश्चय के आधार पर, बाप के महानताओं के आधार पर ये हमारे अंदर धारणा बन जाती है कि बाप के महावाक्य इतने महान है, जिससे हमारी जीवन महान बन जाती है। जब ये हमें बुद्धि के अंदर निश्चय बैठ जाता है, अपने आप जो हम सुनते जाएंगे वो हमारे जीवन के कर्मों में आता जाएगा, क्योंकि उस पर हमारा चिंतन चलता ही रहेगा। ये बाबा ने बताया, ये बताया, वो अंदर ही अंदर, भले हम कोई भी काम करते रहेंगे, लेकिन महानता होने के कारण माँ ऊंचे ते ऊंचे बाप ने ये बात बताई है, ये महानता हमारे अंदर होने के कारण हम कोई भी काम करते रहेंगे पर बाप के महावाक्यों को याद करते ही रहेंगे। तो ये याद हो जाती है अंदर में, मन के अंदर बाप के महावाक्यों की याद, और हाथों से हमारा कर्म, हाथ पांव माना कर्म इंद्रियों से हमारा कर्म होता है, लेकिन ये जो हमारे अंदर याद है वो हमारे कर्मों में भी श्रेष्ठता लाती जाती है। जैसे मानो हमारी दृष्टि है, जब हम स्वयं को नहीं पहचाने थे तो हमारी दृष्टि देहभान की थी, लेकिन जब बाप से हमें ये पहचान मिली तो हमारी दृष्टि क्या बन गई, कौन सी बन गई, रूहानी दृष्टि बन गई ना। परंतु रूहानी दृष्टि बन गई ये हमने समझ लिया कर्म में, जब हम देखते हैं, हमें ये देखना होगा बरोबर, हमें ये स्मृति आती है, आत्मा इन आंखों के द्वारा देख रही है, जिसको देखते हैं उसके प्रति भी ये स्मृति आए कि इस शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है, जो आत्मा एक ही, हम एक ही बाप के बच्चे हैं, ये स्मृति जागृत होती है, ये अपने को देखना है। ऐसे नहीं हमें ज्ञान मिला तो हमारी दृष्टि रूहानी हो गई, ज्ञान से रूहानी दृष्टि होती है ये बात ठीक है, पर मेरे कर्मों में, मेरे देखने में, देखते समय मुझे ये स्मृति आई कि मैं आत्मा आंखों के द्वारा देख रहा हूं, जिसको देखा उसके प्रति स्मृति आई ये आत्मा है। अगर ये स्मृति जागृत हुई तब तो कहेंगे हमारे कर्मों में रूहानियत है, हमारी रूहानी दृष्टि बनी, नहीं तो क्या कहेंगे, इसको भी दूसरे शब्दों में याद कहा जाएगा, कर्म तो हुआ देखना, परंतु देखने के साथ साथ मन के अंदर ये स्मृति जागृत हुई तो देखने के साथ ये मेरी याद रही, कर्म देखने का, लेकिन मन के अंदर वो स्मृति रही। तो याद और कर्म, ऐसे जो भी हम कर्म करें तो कर्म तो कर्म इंद्रियों के द्वारा होता है, लेकिन याद, याद किसके द्वारा होंगी? याद हमारी मन के द्वारा होती है, मन और बुद्धि। बुद्धि में वो स्मृति ऐसी पक्की भरी हुई हो जो अपने आप मन के द्वारा संकल्प वो ही चले जो स्मृति स्वरूप हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे चलते फिरते याद करते रहो। याद और सेवा, सेवा कौन सी जो हमें याद दिलाती रहती है? ये हुआ कर्म में याद। पर सेवा और याद का बैलेंस, वो कौन सी सेवाएं जिन सेवाएं करते भी हमें याद बनी रहे, अपने आप आती रहे। तो आप लोगों को याद होगा अव्यक्त बाप दादा ने एक बार मुरली चलाई थी, चार प्रकार की सेवाएं याद है, जिन सेवाओं में याद समाई हुई रहती है वो सेवाएं हमें सुतः याद दिलाती है। कौन सी? देखो किसको याद है, मनसा वाचा कर्मणा, ये तो तीन हो गई। बाबा ने बताया था स्व की सेवा, विश्व की सेवा, यज्ञ सेवा और मनसा सेवा, चार प्रकार की सेवाएं। ये सेवाएं हमें याद अपने आप कराती रहती है। स्व की सेवा, कौन सी स्व की सेवा? स्व की सेवा तो यही है ना, स्वमान जो बाबा ने हमें याद दिलाया है, जो स्वमान की पहचान बाबा ने हमें दी है, वो स्वमान जैसे हम दूसरे को याद दिलाते रहें वैसे स्वयं को याद दिलाते रहें। स्व की उन्नति के लिए सदा स्वमान की याद हमारी बनी रहे, ये है स्व की सेवा। तो स्व की सेवा में ये सेवा भी हो गई और उस सेवा में याद समाई हुई है। ये चार प्रकार की सेवा जो बाबा ने बताई है इसमें सेवा समाई हुई है। अगर इस प्रकार हम सेवा करते हैं तो ये सेवाएं याद से ही होती है और याद निरंतर बना के रखती है। विश्व सेवा हम कौन सी करेंगे? बाबा ने हमें कौन सी सेवा के लिए निमित्त बनाया है? विश्व परिवर्तन के लिए बाप का संदेश देते रहे। हर मनुष्य आत्मा को हमें बाप का संदेश देना है, बाप का परिचय देना है। क्या क्या बाप का परिचय देना है वो भी बाबा हमें बताते हैं। तो इस प्रकार से ये सेवाएं जो है वो हमें याद बना के रखती हैं। सेवा भी है और सेवा के साथ याद भी है। ऐसे ही यज्ञ सेवा आप आते हो मधुबन में, जो भी यज्ञ सेवा करते हो तो याद है ना, बाबा का यज्ञ है, बाबा के यज्ञ की सेवा करते हैं, तो यज्ञ सेवा भी हमें याद बना के रखती है। ऐसे ही जब हमारी मनसा पावरफुल है तो मनसा सेवा भी याद बना के। तो ये जो चार प्रकार की सेवाएं हैं उस सेवा में याद समाई हुई है, सेवा भी है और याद भी है। तो हमें याद के साथ इस प्रकार की अगर हम सेवाएं करते, हमारा अटेंशन है स्व पर कि हम सदा स्वमान में स्थित रहे, ये अटेंशन याद ही है ना। तो और अटेंशन रहने से जितना हम स्वमान में स्थित रहेंगे उतना ऑटोमेटिकली हम दूसरे को भी स्वमान की याद दिलाते रहेंगे। तो ये एक तरफ सेवा हो गई, दूसरी तरफ याद हो गई। तो याद और सेवा दोनों कठी कठी है, ये बैलेंस है, तो उसमें हमारे कर्म सदा श्रेष्ठ रहेंगे। जितना हमारा ये बैलेंस रहेगा उस बैलेंस से हमारी याद बनी रहेगी और कर्म हमारा श्रेष्ठ रहेगा। ये बैलेंस हमारी बुद्धि को अडोल रखेगा, अथवा समझो कोई भी ऐसी समस्या आ जाए, कोई भी ऐसी परिस्थिति अगर आ जाए हमारे सामने, तो अगर इस बैलेंस में हम चलते हैं, याद और सेवा इस प्रकार हमारी साथ साथ चली हुई है, तो वो हमको हर परिस्थिति के समय अडोल रखेंगी, डोलायमान नहीं करेगी। अनेक प्रकार के जो संकल्प हैं, जिसको हम व्यर्थ कहते हैं, वो हमारे नहीं चलेंगे। क्यों? बहुत समय हम उस प्रकार से सेवा और याद के बैलेंस में चलते आए हैं। ये ईश्वरी सेवाएं सदा हमारी याद बना के रखती है। जब हम दूसरों को समझाते हैं, बाप का परिचय देते हैं, लेकिन ये याद तब बन के रहती है, अंदर में हमें अटेंशन जरूर चाहिए। अटेंशन के सिवाय कभी कभी समझो हम समझाते भी रहेंगे लेकिन उस स्थिति में नहीं रहेंगे। इसलिए पहले स्वसेवा, स्वयं को स्वमान में स्थित रखें, ये हमारा अटेंशन हो, पहले स्व को स्थित करने का अटेंशन। अगर ये अटेंशन है, हम स्वमान में अपन को स्थित रहने का अटेंशन देते हैं, तो वो अटेंशन हमारी याद बना के रखता है। और ये स्व को स्वमान में स्थित रखने की सेवा, जब वो सेवा और याद दोनों का बैलेंस है, जैसे तराजू होती है, जब बैलेंस बराबर होते हैं तो बीच का कांटा स्थिर रहता है ना, हिलता नहीं, अटेंशन स्थिर है। तो जब हमारा ये सेवा और याद का बैलेंस है, ये अटेंशन है, तो हमारी स्थिति एक रस बन जाती है, अडोल हो जाते हैं, अचल बन के रहते हैं। कोई भी परिस्थिति में हम डोलायमान नहीं होंगे, हिलेंगे नहीं, क्योंकि इस बैलेंस से जो हमारे में अडोलता आती है, वो हमें हर बात की समझ दे देती है। परिस्थिति आने पर हम उसको जान सकेंगे, क्योंकि नॉलेजफुल स्टेज है। नॉलेजफुल स्टेज होने के कारण परिस्थिति के कारण को समझ करके उसका निवारण सहज कर सकेंगे। परंतु तब जब ये हमारा बैलेंस है, स्व सेवा का भी बैलेंस चाहिए और फिर विश्व की सेवा। तो सेवा तो करते हैं दूसरे की, परंतु स्मृति के साथ करें। जितना हम स्मृति के साथ सेवा करेंगे, वो सेवा हमें मदद करेगी। स्मृति से हम सेवा करेंगे तो वो हमारा याद का बैलेंस बना के रखेंगे। नहीं तो सेवा करते 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 क्या होता है, आज या कल बाबा ने बताया, तो कभी कभी अहम भाव भी आ जाता है। जब हम अधिक सेवा करने लग जाते हैं, या कभी कभी हमारी सेवा की सफलता भी निकलती है, तो ये देख करके खुशी होती है, तो उसमें कभी कभी देहभान आ जाता है, अहम माना देहभान। तो अहम भाव जागृत न हो, सदा हमारी एक रस स्थिति बनी रहे, हमारी अडोल अवस्था रहे, उसके लिए हमें सेवा और सेवा के साथ स्मृति अटेंशन, वो स्मृति रख के अगर हम सेवा करते है तो सेवा स्मृति की, पहचान देना बाप की पहचान देना ये स्मृति की सेवा है, पर सूक्ष्म में हमारा अटेंशन रहे कि अंतर्मुख हो करके उस अपने स्वरूप में रह करके बाप से जो हमें प्राप्ति हुई है उस अंदर की महानता से हम दूसरे को परिचय दें। जब इस रीति किसको परिचय देते हैं तो वो सेवा के साथ याद का बैलेंस हो जाता है, वो हमारी बुद्धि को सदा बाप ने जो हमें खजाना दिया है वो हम दूसरों को दे रहे हैं। मैं देता हूं नहीं, मैंने किसको परिचय दिया ऐसा नहीं, पर बाप ने जो हमें खजाना दिया है वो हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं। इससे क्या हो जाता है, बाप की याद, याद होने के कारण वो अंदर हमें शक्ति रहती है, जिस शक्ति के आधार से हमारी स्थिति आत्म अभिमानी बनी रहती है, और जो हम सेवा करेंगे दूसरे की सेवा करेंगे उससे हमारा उसके ऊपर प्रभाव भी पड़ेगा और साथ साथ हमारी स्थिति भी अडोल एक रस बनती जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं सदा सेवा और याद दोनों का बैलेंस हो। यज्ञ सेवा भी हमें याद दिलाती है कि ये बाप का यज्ञ है। कोई भी यहाँ कर्मणा सेवा आप करेंगे, क्योंकि यज्ञ सेवा माना यज्ञ में कर्मणा सेवा, तो जो भी हम यहाँ सेवा करेंगे तो हमारे बुद्धि में ये याद रहेगा ना, बाबा का यज्ञ है। और ये यज्ञ बाबा ने किस लिए रचा है, किस लिए रचा है, हा? हम माताओं के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए यज्ञ रचा है करने के लिए, और अपने को परिवर्तन करने के साथ साथ विश्व का परिवर्तन, ये कार्य बाबा ने हम बच्चों को दिया है। हम अपने को परिवर्तन इसलिए ही करते हैं, अपना भी कल्याण तो अपने साथ फिर दूसरों का कल्याण, क्यों कर? बाबा ने ये हमें नॉलेज दिया हर बात के अंदर, हमें अगर बाप की नॉलेज याद आती रहेगी तो उस नॉलेज के आधार से वो हमारे में नशा रहेगा, वो नशा हमारी स्मृति को बना के रखेगा। जब हमें ये याद आएगा भाई क्यों हमें विश्व परिवर्तन करना है, तो इसमें हमको नॉलेज याद आनी चाहिए। तीनों ही रूपों से है ना, तो एक तो बाप का, बाप की याद हो गई, फिर इसमें नॉलेज याद आती है क्योंकि अभी सृष्टि के इस चक्कर का अंतिम समय है, पुरानी दुनिया है, तमो प्रधान दुनिया है, इस तमो प्रधान दुनिया को परिवर्तन होना ही है, पुरानी को नया बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है, बाप आकर के नई दुनिया स्थापन करता है, और वो नई दुनिया स्थापन करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया। इसी प्रकार हमारा ज्ञान का स्मरण ये भी याद हो जाती है, बाप ने ये नॉलेज दिया ये भी अंदर में बुद्धि में याद आ जाता है, और ये याद होने से जो भी हम सेवा करते जाते हैं उससे हमें खुशी भी होती है और शक्ति भी मिलती है। याद अंदर में याद है तो शक्ति मिलती है, सेवा करते हैं तो खुशी मिलती है, तो खुशी भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है। जब हम शक्तिशाली बनते जाते हैं तो जो भी हम कार्य करते जाएंगे, जो भी कर्म करेंगे, वो कैसा कर्म रहेगा। शक्तिशाली बनकर के हम जो भी कर्म करेंगे वो कर्म हमारा श्रेष्ठ बना रहेगा। बल्कि जितना जितना हम शक्तिशाली बनते जाएंगे, जितना हम नॉलेजफुल रहेंगे, उससे और क्या फायदा होगा। बाबा कहते हैं समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति स्वयं स्वतः अपने आप समय पर काम करती रहेंगी। लेकिन वो करेंगी तब जब हम शक्तिशाली बने हुए होंगे। जब हम इतने नॉलेजफुल बने हुए होंगे तब समय पर नॉलेज भी अपना काम करेंगी, समय पर शक्तियां भी अपना काम करेगी। लेकिन ये तब होगा जब हमारा इतना निरंतर अटेंशन हो, निरंतर स्मृति स्वरूप बने हुए हो, स्मृति हमारी खंडित ना हो। अर्थात अभी अभी हम स्मृति में हैं और क्या बोलेंगे, हाँ बोलेंगे आगे, अभी अभी कर्म में आ जाते, ऐसे ही बोले ना, शुभ बोलना है। हाँ तो करनी पड़ी। याद बनी रही या याद करना पड़ा, किस आधार पर बनी रही? हाँ? क्योंकि बाबा कहते हैं जब सुनते रहते हैं, अगर उसको ध्यान से सुनते हैं, उस समय पूरा अटेंशन उसमें है, तो उसका ये फायदा मिलता है। क्योंकि अटेंशन एक ही तरफ है, तो फिर एक तरफ अटेंशन होने से एक की याद स्वतः बन जाती है। अगर हमारा अटेंशन डाइवर्स होता है और बात बुद्धि में आ जाती है, तो फिर याद का रिकॉर्ड बजेगा, तो थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा अपन को, इधर उधर से उन बातों को हटाना। जब तक हटाओ तब तक 3 मिनट पूरा हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं चलते फिरते याद करते रहो। उस कहने का भी भाव यही है कि चलते फिरते याद होने से वो लिंक बना रहेगा ना। तो जब लिंक बना रहता है, जब हम योग में आके बैठेंगे, वो चलते फिरते जो सारा समय, चलो कभी थोड़ा थोड़ा समय याद किया, कभी न भी किया, पर पूरा समझो दिन भर में इतना जो हम काम काज करते हैं उसमें अगर घड़ी घड़ी हमने अपना अटेंशन अपने पर देते रहे, तो वो अटेंशन जमा होता है, लिंक बन जाता है कि हमें ये याद है। अगर भूल भी गया फिर भी याद है कि मुझे याद करना है। तो ये जो हम अटेंशन दिन भर देते आएंगे, वो जब हम योग में बैठेंगे ना, तो हमको ये अटेंशन देने की जरूरत नहीं। जो दिन भर हमने अटेंशन दिया, लिंक बना रहा, तो बैठने से हमारा कनेक्शन जुट जाएगा। कनेक्शन जुट जाएगा तो हम उस याद के लगन में मग्न हो सकेंगे। अगर हम चलते फिरते याद नहीं कर सकते हैं, करते हैं, तो जब बैठते हैं तो लगन लगाने की कोशिश करते हैं, तो मग्न नहीं हो सकते हैं, मग्न अवस्था नहीं आती है। और जब तक मग्न अवस्था नहीं आती है, तो उसका आनंद अनुभव नहीं कर सकते हैं। भले गाया हुआ है कि ये आनंद किससे पूछो, अतीन्द्रिय सुख पूछो किससे, आज था ना मुरली में, हाँ पूछा ना दादी ने, क्या जवाब दिया था, हाँ फिर भी गोप गोपियां याद है या हम ही वो ही है। तो ये याद रखो कि अतीन्द्रिय सुख जो हमारा गाया हुआ है वो कैसे मिलता है। सुख का अनुभव, सुख में लवलीन हो, तो ये लवलीन होने से, मग्न होने से उस आनंद का अनुभव होता है। जब तक हम लगन लगा रहे हैं तो आनंद का अनुभव नहीं होगा। जैसे देखो बिजली का हम देते हैं ना, जब कनेक्शन कर रहे हैं, रबर निकाल रहे हैं ऊपर से, वायर को वायर से मिला रहे हैं, तब तक लाइट नहीं आती है। लाइट कब आती है? जब कनेक्शन हो जाता है, वायर मिल जाती है, तो हमारा ये बनाना करना छूट जाता है, मिल गया, लाइट आ जाती है। और जब तक हम मिला रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं, रबर उतार रहे हैं, वायर को वायर से मिला रहे हैं, जॉइंट कर रहे हैं, तब तक लाइट नहीं आती है। तो हम जब योग में बैठते हैं उस समय हमें क्या करना है? हाँ, कनेक्शन उस समय मिलाते नहीं रहना है, ये मिलाते रहने का, रबड़ उतारना है, ये मिलाना है, ये जोड़ना है, ये हमारा दिन भर का जो अटेंशन है ना, उसमें ये काम होता रहे। और जब बैठे जुटा हुआ हो और वो लाइट और माइट हमें अनुभव हो, मग्नता अनुभव हो, और उस मग्न में हम मस्त होके बैठे रहे, तब उसका आनंद अनुभव होता है। नहीं तो अंदर ही अंदर मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं बोलते रहे। आत्मा तो हूं पर बोलना पड़ता है, क्योंकि दिन भर में हम भूल गए हैं। देह से काम किया है, शरीर से काम किया है, कर्म इंद्रियों ने काम किया है, मन भी कर्म इंद्रियों में लग गया, उसके कर्म में लग जाता है। फिर उसको उससे हटा, जब बैठते हैं तो उसको उससे हटाते हैं, कर्म भूलो। सारा दिन जो कर्म किया तो मन को वो आदत है, जो करेगा वो उसको फिर घूमता है, अपने आप घूमता रहेगा, आप याद कराओ या न कराओ। पर ये अभी हमें आदत डालनी पड़ती है अपने को, मैं आत्मा मालिक हूं, मन मेरा संकल्प है, मेरा संकल्प सदा शुद्ध होना चाहिए, मेरा संकल्प सदा बाप की याद का होना चाहिए। ये मुझे अभी नॉलेज है, समझ है, इस बात को हमने समझ लिया है कि याद से मन अगर बाप की याद में है तो मन आनंद में है, एकाग्र है, भटकना उसका बंद हो जाता है। अगर बाप को याद नहीं करता है तो भटकता रहता है, जो कर्म करेंगे वो भटकता रहेगा, आंख देखती है उस पर चिंतन करेगा, चलते फिरते इधर उधर की बातें जो सुनेंगे, कान में आवाज तो पड़ेगा ना, चाहे अपनी हो या पराई हो, पर कान में जो आवाज पड़ता है मन भाग जाता है, उसमें लग जाता है, उसका चिंतन करने लग जाता है, क्योंकि मन की गति बड़ी तीव्र है, मन एक ही समय पे बहुत काम करता है, कर्म इंद्रिया एक ही समय पे एक काम करेंगी, पर मन एक ही समय में बहुत काम करता है, अनेक काम कर लेता है, इतनी उसकी गति तीव्र है। और आत्मा मुझे आत्मा की गति उससे भी तीव्र है, क्योंकि मैं आत्मा तो अति सूक्ष्म हूं, उसको भी जानने वाली, उसको भी समझने वाली, उसको भी काम कराने वाली, मैं आत्मा तो सब काम कराती हूं ना, सर्व कर्म इंद्रियों से काम कौन कराता है? ये नशा रहे, ये स्मृति बनी रहे, इसलिए बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी अपने को याद दिलाओ, इस कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूं, चेतन शक्ति हूं, कराने वाली हूं, तो कराने वाली हूं तो जो कराने की शक्ति है, जो कराने वाला होता है उसको पता है किस किस से क्या क्या काम कराना है, तब तो उसको कराने का कार्य दिया जाता है। तो मैं मालिक बन करके किस किस से कर्म इंद्रियों से काम क्या करा है, भले इस स्थूल कर्म इंद्रियों का तो फिक्स है, शरीर निर्वाह के लिए कर्म इंद्रिया सब काम करती है, सर्व कर्म इंद्रिया काम करती है, और आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें मन और बुद्धि से काम कराना है। मालिक बन करके हम अपने मन यानी संकल्प शक्ति और स्मृति की शक्ति उसको श्रेष्ठ बनाते जाना है। बनाना भी हमको है, फिर उनके द्वारा हमको श्रेष्ठ बनना है। ये आपस में अरस परस चलता है। जितना हम संकल्प श्रेष्ठ करेंगे उतनी हमारी स्मृति श्रेष्ठ बन जाती है, और जितनी हमारी स्मृति सदा श्रेष्ठ बनी हुई है तो आत्मा में श्रेष्ठता अर्थात शक्ति जागृत होती है। जिस शक्ति से हम हर कर्म शक्तिशाली करते रहते हैं। इसलिए हमें सदा ये याद रहे, क्या याद रहे, मैं आत्मा इन शरीर। बात भले वो ही छोटी है, पहला लेसन है, लेकिन ये पहला लेसन हमने कितना पक्का किया है। इसलिए बाबा हम बच्चों को आप देखेंगे साकार मुरली के अंदर बार बार ये बात है। हर मुरली में एक बार तो ये बात जरूर आती है। अभी इस वर्ष में पहला जो अव्यक्त बाप दादा ने मुरली चलाई है, सुनी होंगी आप लोगों ने, शायद न भी सुनी हो क्यों, कोई आए आते गए होंगे। उसमें भी अव्यक्त बाबा दादा ने इसी बात पर हमारा ध्यान खिंचवाया है। जब हम कहते हैं आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, तो शांत स्वरूप बन जाए। ये नॉलेज मिली हमको बाप के द्वारा। अब जो नॉलेज मिली, सुना, सुनते समय लगा ये तो राइट बात है, बहुत अच्छी बात है। अब बाबा कहते जब आत्मा है ही शांत स्वरूप, बन जाओ शांत। देखो संकल्प शांत होता है, संकल्प में शांति समाई हुई है, बुद्धि के अंदर शांति है, या लहरें उछलती रहती उछलती रहती। तो बाबा ने कहा कि ये स्वरूप बनने का अभ्यास करो, याद और सेवा। निरंतर हमारी याद बनी रहे, जो जो याद के प्रकार बाप ने हमें स्वमान की पहचान दी, बाप ने स्वयं का परिचय दिया, बाप ने सृष्टि चक्र की नॉलेज दी, अर्थात कैसे हमारा ये 84 का चक्कर चलता है। अब हमें वापस घर जाना है, घर की नॉलेज दी, साथ साथ कर्मों की गति कितनी गहन है वो भी नॉलेज दी, कर्म अकर्म विक्रम के गति की। अब ये सारी नॉलेज हमारी बुद्धि में समय समय पर, क्योंकि मन को वैरायटी चाहिए, एक ही बात में नहीं स्थित होंगे। इसलिए देखो गुरु लोग जब मंत्र देते हैं तो मन उनों का स्थिर होता है, मुख मंत्र बोलता रहे और मन भागता रहे, भक्ति मार्ग में ऐसा ही होता है ना। लेकिन ज्ञान मार्ग में मुख से ना बोलो, मुख अंतर्मुख हो जाए, अंदर का मुख अर्थात मन, मन ये चिंतन करता रहे जो बाप ने नॉलेज दी है, उस नॉलेज को अपने मन के अंदर चिंतन कराते रहो, तो फिर मन कहाँ भागेगा ही नहीं, उसमें ही लगा रहेगा। इसलिए बाबा ने वैरायटी विस्तार, इतनी सारी नॉलेज, कब बाप की याद करो, कब बाप के महानताओं को याद करो, कब स्वमान को याद करो, कब बाप से जो प्राप्तियां हुई है उसको याद करो, कभी बाप ने जो हमें स्मृतियां दिला दी है, क्या क्या स्मृति दिलाई है याद है, याद होगी। बाबा ने एक बार मुरली में, साकार मुरली के अंदर, कि बाप ने तुम बच्चों को क्या क्या स्मृतियां दिलाई है, हमारे आदि स्वरूप की स्मृति, हमारे अनादि स्वरूप की स्मृति, वही बात आती है, हमारी 84 चक्कर की स्मृति, हमारे अंतिम जन्म की स्मृति, बाप किस समय पर आती है और अब हमें क्या दे रहा है, ये सब स्मृतियां बाबा ने हम बच्चों को फिर से दिलाई हैं। तो कब स्मृति के रूप में याद करो, कब प्राप्ति के रूप में याद करो, कब भाग्य को याद करके उस खुशी में आ जाओ, कब बाप की महानताओं को याद करके अपने को इतना ऊंचा समझ के उस नशे में स्थित हो जाओ। इस प्रकार मन को सदा उस चिंतन में लगा के रखो, ये है याद सदा बनी रहे, और इस याद के साथ साथ सेवा अथवा कोई भी कर्म करते रहो, कर्म इंद्रियों से कराते रहो, ये बैलेंस बना रहेगा तो सदा हमारी एक रस स्थिति बनी रहेगी, जो सर्व समस्याओं अथवा परिस्थितियों को सामना कर सकेगी। ओम शांति। अभी हम 3 मिनट याद में बैठेंगे और उसके बाद एक ग्रुप उठेगा और एक ग्रुप बैठेगा। अब कौन बैठेंगे और कौन उठेंगे? हाँ?